नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। श्री मोदी कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न अशांति के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय राष्ट्र बना हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित एनएक्सटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद देश स्थिर और दृढ़ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिए स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।
ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा। जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।
श्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि तेल उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के साथ पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर बातचीत की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की मृत्यु होने तथा नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचने पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा वस्तु और ऊर्जा का निर्बाध परिवहन भारत की उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। उन्होंने शांति और स्थिरता के लिए ईरान से प्रतिबद्धता व्यक्त की और संवाद तथा राजनयिक माध्यमों से समाधान तलाशने का आग्रह किया। संसद में आज 2025-26 के दूसरे चरण के अनुपूरक अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा और उस पर मतदान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चर्चा का जवाब देंगी। राज्यसभा में आज भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। कल लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने के मुद्दे पर सरकार के कदमों के बारे में बयान दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि रसोई गैस को लेकर लोगों में घबराहट है और रेस्तरां चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। रेहड़ी पटरी वालों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल शोधक देश है। इससे देश को पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता के मामले में काफी राहत मिलती है। नई दिल्ली में उन्होंने पश्चिम एशिया पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश लगभग 60% एलपीजी का आयात करता है। सुश्री शर्मा ने कहा कि देश में प्रतिदिन 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जाते हैं और सिलेंडर की कमी की कोई जानकारी नहीं है।
Government is making all efforts.
सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराहट में बुकिंग ना करें और वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में जहां भी संभव हो ईंधन की बचत करने का प्रयास करें।
ग्लोबल अनसर्टेनिटी।
पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में पिछले कुछ घंटों में ताजा हमलों और हवाई बाधा की घटनाएं तीव्र हुई हैं। इसराइल की सेना ने बताया कि उनके विमानों ने बसीज अर्धसैनिक बल द्वारा संचालित जांच चौकियों को निशाना बनाकर तेहरान में हमले किए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि वे खाड़ी के अरब देशों पर हमले जारी रखेंगे। उन्होंने रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद करके अमरीका और इसराइल पर दबाव बनाने का निश्चय किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश में आज अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।